कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नमः। जी प्रश्न।
यस
हरे कृष्णा बापू जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे लास्ट सत्संग में आपने एक कथा सुनाई थी कि स्वर्ग और नरक के बारे में, कि जैसे इंसान कर्म करता है उसी प्रकार स्वर्ग और नरक मिलता है। फिर आपने कहा गोलोक धाम के बारे में बताऊंगा, तो गोलोक धाम जाने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है?
सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन। सिंपल सी बात है, क्योंकि गुरु की आज्ञा कृष्ण की आज्ञा से अलग नहीं होती। कृष्ण ने कहा सर्व धर्मान प्रत्याजे मामेकम श्रावण, तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर और मेरी शरण में आओ। और गुरु महाराज एग्जैक्ट वही कहते हैं कि तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और कृष्ण की शरण में आओ। अर्थात जो कृष्ण की आज्ञा है, जो कृष्ण की आज्ञा है, गुरु महाराज उस आज्ञा का पालन करवाते हैं। गुरु महाराज उस आज्ञा का पालन करवाते हैं। लेकिन जिस गुरु की आज्ञा कृष्ण की आज्ञा के विपरीत है, पहली बात तो है कि गुरु नहीं है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। और कोई गुरु कहता है कि भगवान को छोड़ के तुम किसी और के भक्त बनो, वो गुरु नहीं हो सकता। भगवान कहते मन मना, तुम मेरा मनन करो। और कोई गुरु कहता है कि कृष्ण को मनन, भगवान का मनन छोड़ के तुम मेरा मनन करो, वो गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण कहते मद याजी माम नमस्कुरु, तुम मेरे ही आगे अपने सर झुकाओ, अपने प्रणाम करो। और कोई गुरु कहता है कि भगवान को छोड़ के किसी अन्य के सामने जाके सर झुकाओ, वो गुरु नहीं हो सकता। मन मना, कृष्ण कहते हैं मेरा मानो। और अगर गुरु भी कहता है मेरा मानो तो कृष्ण कहते हैं मेरा मानो, और अगर गुरु भी कहते हैं मेरा मानो तो वो गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरा मानो और गुरु कहते हैं कृष्ण का मानो, तो वो गुरु। क्योंकि गुरु का अपना कुछ सेल्फ मेड है ही नहीं। जिस तरह से पुलिस का काम सरकार के नियमों पे लोगों को चलाना, ऐसे ही गुरु का काम है अपने शिष्य को भगवान की आज्ञा के अनुसार चलाए। और भगवान की क्या आज्ञा, मन मना तुम भव मत भक्तो। और गुरु भी कहते तुम कृष्ण के अर्थात भगवान के भक्त बनो, हरि भक्त बनो, राम भक्त बनो, परमात्मा, ये गुरु की आज्ञा। लेकिन यदि कोई गुरु हमें कृष्ण अर्थात भगवान की सेवा से रोकता है, कोई गुरु अर्थात जो हमें ज्ञान दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, वो किसी ऐसे मार्ग की ओर ले जाए जो भगवान के विपरीत है, वो गुरु हो नहीं सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, भगवान वामन जब राजा बलि के सभा में पहुंचे और राजा बलि से तीन पैर जमीन मांगी, और जब राजा बलि देने को तैयार हुआ तब शुक्राचार्य ने रोक दिया, मना कर दिया, मत देना इसे। तो गुरु का काम तो है कि जो शिष्य ना भी दे तो क्या बोले, कृष्ण को दो, भगवान को दो, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है और तुम उन्हीं के दिए हुए में से उनको देते हो। लेकिन अगर कोई गुरु कहता है कि नहीं, भगवान को तुम नहीं दो, ईश्वर को तुम नहीं दो, तो वो गुरु नहीं है। और यही शुक्राचार्य ने किया। राजा बलि जब देने को तैयार हो गया तब शुक्राचार्य ने बोला नहीं देना, तब भी बलि माना नहीं और जल उठाकर संकल्प लेने लगा। तब शुक्राचार्य ने क्या किया, वो जो करमंडल की टोटी होती है उसमें चला गया ताकि जल ही उससे ना निकले और वो तिथि चली जाए जिसमें उसको संकल्प करना था। और भगवान ने तो जान लिया, तब भगवान वामन ने क्या किया, एक तिनका उठाया और टोटी को साफ करने लग गए जैसे हम करते हैं। तब वो एक तिनका शुक्राचार्य की आंख में लगा और उनकी आंख फट गई। कृष्ण तो गुरु की सहायता करते हैं, यहां कृष्ण ने भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भगवान और भक्त के बीच रुकावट बन रहा था, जबकि गुरु का काम है भगवान और भक्त के बीच एक पुल का काम करे, एक ब्रिज का काम करे। तो यहां में बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लोगों को, तथाकथित लोगों को देखता हूं जो कभी कभी तो ईश्वर ही का खंडन कर देते हैं और स्वयं को ईश्वर, आप मानो ना मानो, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उस दिन एक ऐसी रिसर्च कर रहा हूं, एक व्यक्ति जिसको हजारों लोग सुन रहे हैं और वो दावा करता है मैं कल्कि अवतार हूं, वो दावा करता है कि तुम अगर तुमको जब जप करना है मंत्र तो मेरे फोटो का ध्यान करो, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मैं कल्कि अवतार। समझे, इस तरह के जो लोग हैं जो स्वयं में ही भगवान बन जाते हैं, तो भगवान को दूर वो गुरु बनने के भी लायक नहीं और गुरु तो दूर वो इंसान बनने के भी लायक नहीं। क्यों कि जिसने, जैसे एक उदाहरण दूं, हम भारत सरकार अपना डिप्लोमेट कहीं बेचती है तो क्या करना है? अपना रिप्रेजेंट करने के लिए कि भारत की रिप्रेजेंटेशन करे और उनकी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाए, जो भारत आना चाहते हैं उनको वो वीजा दे और जो भी भारतीय है उनकी सहायता करे, यही है ना डिप्लोमेट। ऐसे ही गुरु कृष्ण के बिहाव पर उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। गुरु का काम है जो कृष्ण की आज्ञा है उसका इंप्लीमेंट कराए। कृष्ण कहते हैं मन मना, भवमत। तो गुरु का काम है कृष्ण का मनन करवाए और कृष्ण के भक्त बनाए, ये गुरु का काम है। अब कृष्ण कहते भवमत भक्तो और गुरु कहते भवमद भक्तो, तो ये गुरु नहीं हो सकता, ये गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण कहते भव मद भक्तो और गुरु कहता है भव कृष्ण भक्तो, भव भगवान भक्तो, तो वो गुरु है। लेकिन अगर कृष्ण कहते भवमत भक्तो और दूसरी तरफ गुरु भी कहता है भवमत भक्तो, कृष्ण कहते सर्वधर्मान प्रत्याजय मामेकम, कृष्ण कहते तुम मेरी शरण में आओ और अगर गुरु कहते तुम मेरी शरण में आओ, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन हो सकता? कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ और गुरु कहते तुम कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण की शरणागति होने में उनकी सहायता करता, वो गुरु है। जैसे यहां तक कि गुरु ग्रंथ जी महाराज भी कहते हैं पूरे गुरु का जो पूरा गुरु है परफेक्ट प्रमाणिक उनका उपदेश है। क्या उपदेश है? पार ब्रह्म। वो उनके उपदेश के माध्यम से आप पार ब्रह्म परमात्मा के नजदीक होने लगते हो। कैसे? विधि क्या है? श्वास सिमरो गोविंद। तो जो श्वास सिमरो गोविंद कहा गया है, गुरु श्वास सिमरो गोविंद सिमरन करवाते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा और कृष्ण की आज्ञा कैसे है समझो। कृष्ण की आज्ञा है तुम मेरी शरण में लो और गुरु की आज्ञा है तुम कृष्ण की शरण लो। आज्ञा तो दोनों ही दे रहे हैं। दूसरा, गुरु सिंपली कृष्ण के शब्दों को रिपीट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। एक बात बताऊं, अच्छी बातें करना अलग बात है, सोशल साइंस की बातें करना अलग बात। वो तो इतने मोटिवेशनल लेक्चर कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और कृष्ण भावना की बातें करना अलग बात है। इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु वही करता है जो कृष्ण ने कहा है कि तुम मेरी शरण में लो। वो अपने शिष्यों को कहते तुम कृष्ण की शरण लो। और कोई ऐसा करता है तो वो प्रमाणिक गुरु है। लेकिन जो कहता मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही फलाने देवता, आजकल ईश्वर का तो अवतार छोड़ो, देवी देवताओं का भी अवतार होने लगे, जो ऐसा कहते हैं वो गुरु कभी वो नहीं सकता है। इसलिए अगर गोलों को जाना है तो सिर्फ चार चीजें करो, कुछ ज्यादा करने की मनमना, भव मद भक्तो, मदयाजी, माम नमस्कृ, माम एव यश्यसि सत्यम ते प्रियते प्रति प्रियो असि, तुमसे मैं प्रॉमिस करता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए, ये हरि का वचन है। और आगे क्या कहा? मदयाज इमाम, कौन सा चलोगे? और आगे भी कहा कि ऐसे ऐसे करोगे तो मेरे पास आओगे, 12वां अध्याय। ऐसे ऐसे करोगे तो क्या है वो, कौन सा श्लोक? और फिर इसमें भी 8वें अध्याय में भी उससे पहले स्मरण क्या है? माम एव यशसे, तुम मेरे ही पास आओगे, क्या करो, मेरा स्मरण करते रहो। तो एक बात ऐसे कभी कभी मैं अपने आप से कहता हूं कि अब इस संसार में हम आ तो गए, अपने कर्मों के अनुसार आ गए, और इस संसार को देख भी लिया, और इस संसार में बहुत सारी चीजें फेक है। क्या है? फेक है। एक शॉप में आप जाओ और वो शॉपकीपर वहां का सेल्समैन आपको बोलेगा ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक ही भगवान है। वो आपको पानी ऑफर करेगा, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, और आपसे कितना स्वीट, जी मैडम, यस मैडम, हम तो आप ही के लिए हैं, जी दीदी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब उनका आपके साथ बोलना, आपके साथ व्यवहार फेक है। क्या है? फेक है। क्यों फेक है? कि मात्र उसको अपना सामान बेचना है और बेच के आपसे प्रॉफिट कमाना है। अब बिक गया, सब हो गया, फिर कुछ सामान डिफेक्टिव निकला, अब वापस करने जाओ तो बोलते रुको अभी कस्टमर है, तो हम कौन है, हम कौन है? अरे भाई अभी देख रहे हो ना, कस्टमर है, रुको, तो हम कौन है फिर? हम भी तो, लेकिन तुम्हारे एक्स कस्टमर हो गए, क्योंकि तुमसे जो चाहते थे हमने ले लिया। फिर भाई ऐसा वैसा, रुकिए अभी हम फ्री नहीं है, देख रहे हो कस्टमर, तो हम कौन है फिर अगर ये कस्टमर है तो? ये सारी सेल्समैन ही होती जिसको बोलते फेक होना। ऐसे ही दुनिया की सबसे स्वीट लैंग्वेज आदमी कब बोलता है? जब कर्जा लेना होता, आदमी इतना स्वीट बोलता है, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे, आपका ये ऐसा, आप हमारे लिए भगवान हो, ऐसे बोल देते, बिल्कुल टाइम पे आपको पैसे दे देंगे, कभी कभी तो दूध में धोकर आपके पैसे लौटाएंगे। हमने आज तक पैसा कभी किसी का खाया? अरे पैसा खाने का है क्या? पैसे से जो चीजें लेते वो खाने की होती है, पैसा किसी का खाया नहीं। हम आपका पैसा नहीं खाएंगे। अरे पैसा कहां खाने का, झूठ कहां बोल रहे हो, वृंदावन चंद्र की कसम आपका पैसा नहीं खाएंगे। वाकई पैसा नहीं खाते हो? पैसा खाने की चीज है? पैसे से जो सामान लेते हो वो खाने की चीज, पैसा तो खर्च करने की चीज। ऐसी ऐसी मीठी बातें करेंगे, और जब देने की बारी आई देखो उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, चोर है क्या, भाग जाते हैं क्या, खा जाएंगे क्या? पहले कहते हैं तुम्हारा पैसा नहीं, अब क्या कहेंगे, खा जाएंगे क्या, भाग जाते हैं क्या, रुको थोड़ा भी, बिल्कुल टोन ही बदल गया। क्योंकि उस समय उसका टोन क्या था, फेक था। अब लड़की का रिश्ता आया, लड़के वाले किसा मीठा बोलते, कितना मीठा बोलते हैं, हम आपकी बेटी को अपनी ही बेटी है हमारी, जैसे आपके घर में रहती ऐसे ही हमारे घर में रहेगी, बस ये समझ लो कि अभी तक हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, अब हमने अपनी बेटी को ढूंढ लिया, बस जल्दी से आप शादी की तारीख तय कर लो। सब फेक है। देखो फिर वही आंखें कैसे दिखाते, जो सासू माँ ऐसे ऐसे पैंपरिंग करती है, ये करती वो करती, मुझे मेरी खोई हुई बेटी मिल गई, ये सिर्फ रिश्ता पक्का करने और शादी करने की थी, ये सब फेक था, सब फेक था। लड़का ऐसा भगवान की गाय बन के बैठता है, ससुर के पांव छुएगा, सास के पांव छुएगा, पूरे ससुराल वालों को बर्थडे की विशेष भेजेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये तो कोई पारसमणि आ गया है, छू के ही सबका भला कर देगा। बाद में देखो लड़का की आंखें दिखाता, फेक था। लड़की को देखो ऐसे लगता है जैसे भगवान की पूरी पूरी गाय है, पूरी गाय है। बाद में देखो ये सब फेक होता है, रियलिटी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, सब कुछ फेक होता है। इसलिए आपने इस दुनिया को देख लिया, सब फेक होता है, इसलिए अंत में हमको भी लोग फेंक देते, सीधी बात। ऐसे बोलेंगे, हम कभी सेल्समैन के पास जाएंगे ना किसी शॉप के, ऐसे मैं जाता नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ, एक चीज बताऊं बड़ी मस्त आई है, बड़ी मस्त है। वो कब बताएगा जब हम सब ले चुके होंगे, क्योंकि एक चीज बड़ी अरे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि एक चीज बड़ी मस्त है हमको, भाई आप ना लो, देखो तो सही, देखो क्या मस्त आई है, तो पहले क्यों नहीं दिखाई, मस्त थी तो आप पे बड़ी सूट करेगी। फिर अच्छा देखो ये मैं आप ही के लिए इतनी रेट लगा रहा हूं, क्योंकि हम तुम्हारी नानी लगती है, हमारे लिए इतना रेट आपके लिए, और मैंने कई कस्टमरों को ये रेट में, तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, तुमने मुझे पहली बार देखा, फिर मेरे लिए क्यों, ये सब का सब क्या है। और हो सकता है आपके लिए, आपके साथ इस तरह की बातचीत हुई होगी, हुई होगी। बिल्डर यहां गार्डन आने वाला है, या तीर आने वाला है, या फुहारे आने वाले, बाद में चला के कहां से कहां मामला चला गया, सोना बेचने वाला सोना लिखता है 22 क्रेट, अंदर जाओ तो कहीं ना कहीं हमसे लेता, 22 क्रेट बेचने जाओ तो 22 क्रेट की बात ही खत्म होती। इसलिए सब संसार क्या है, फेक है, इसलिए अंत में हमको भी फेक देते हैं, क्योंकि था ही फेक इसलिए फेक, था ही फेक इसलिए फेक, और उसको फेक जो फेंकता था, हम कौन से सीधे हैं, हम भी तो फेंकते, रिश्ता लेने जाते हैं, आपकी बच्ची को कभी नहीं सताएंगे, अपनी बेटी की तरह रखेंगे, ये सारे फेक डायलॉग्स होते हैं। इसलिए आदमी सबसे मीठा कब बोलता है, जब उसका काम पड़ता है, और आंखें कब निकालता है, जब काम निकल जाता है, काम पैसा पड़ता है, पैसा चाहिए तो हाथ जोड़ता, और जब पैसा मिल गया तो जिसने पैसा दिया होता वो हाथ जोड़ता। इसलिए प्लीज यहां से भाग जाओ, जब शरीर छूटी तो वापस आप ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कौन हमसे प्यार करता है, सब समय पर पता चल जाता। मैंने 40 बरस जो व्यासाश्रम पे गए, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग जो शिला भक्ति पाठ के लिए जान दे दे, अरे मेरे गुरु ऐसे मरे, गुरु ऐसे ऐसे वैसे वैसे, और जब आंख बदली तो उन्होंने ही शिला भक्तिवाद को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाया। आ रही समझ। अरे जमाई का कितना मान होता कहां पर, ससुराल में इतना मान, इतनी इज्जत। और जैसे ही बेटी को उसने थोड़ा 19-20 तंग किया, वही ससुराल वाला जमाई को कहते तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो जो दे रहे थे इज्जत, वो सब फेंक थी। इसलिए फेक फेक फेक, हम भी फेक सुनते हैं और हम भी फेक बोलते हैं। इसलिए अंत में सबको फेक दिया जाता है। लेकिन जो वाकई सतगुरु है वो कभी फेक नहीं बोलता। जो गुरु है वो फेक नहीं बोलता, वो फैक्ट बोलता है। आदि सर वो क्या बोलता है, फेक नहीं बोलता बल्कि फैक्ट बोलता है। और फैक्ट क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, कृष्ण की शरण लो। फैक्ट क्या है, कृष्ण भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फैक्ट है। और फैक्ट क्या है ये ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन जी? हाँ हाँ, वो उस बच्ची को दो जी। दादा आपकी तरफ भी आ रहे हैं।
हरे कृष्ण बापू जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी, चैतन्य चरणामृत में कृष्ण के नाम को ब्रेक डाउन किया गया है और बताया गया है कि द वर्ड कृष्ण इंडिकेट्स द अट्रैक्टिवनेस एंड न मीन्स स्पिरिचुअल प्लेजर। तो कृष्ण वो है जो सबको आकर्षित करते हैं और सबको आनंद देते हैं। फिर भगवत गीता में 9 चैप्टर के 29 श्लोक में कृष्ण ने बताया है कि आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूँ। तो फिर कृष्ण सभी को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? और अगर सिर्फ कहे कि सिर्फ अच्छे लोगों को करते हैं तो शायद मैं ही या नहीं होती। तो असल में कृष्ण किसको अट्रैक्ट करते हैं?
कृष्ण सबको ही अट्रैक्ट करते हैं। ही इज ऑल अट्रैक्टिव, राइट? कृष्ण सबको ही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि सब अट्रैक्ट होते क्यों नहीं? भाई वो तो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन सब अट्रैक्ट फिर होते नहीं? तो आप समझो, लोहे के 10 सिक्के हैं और एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करेगा? लोहे के 10 सिक्कों को इक्वल अट्रैक्ट करेगा या नहीं? जी बेटा, मैं तुमसे पूछता हूँ, माइक में बोलो ताकि सब सुन सके।
यस बापू जी।
लोहे के, लोखंड के 10 सिक्के हैं आयरन के, और उसके सामने मैग्नेट पड़ा है, तो दोनों को, 10 को इक्वल अट्रैक्ट करेगा या नहीं?
यस।
लेकिन कुछ सिक्के हैं जिनके ऊपर कोई लेयर चढ़ गई है, कोटिंग चढ़ गई है लकड़ी की या किसी ऐसी अन्य धातु की, और सबको तो मैग्नेट क्या करेगा, सबको ही अट्रैक्ट तो एक जैसी शक्ति आ रही है, लेकिन जिनके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है, कोटिंग हो गई है, वो क्या करेंगे? बट माइक में बोलो,
नहीं अट्रैक्ट होंगे।
तो आप कह सकते हो कि मैग्नेट इनको तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा? मैग्नेट उनको सबको एक जैसा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ पे ऐसी लेयर चढ़ गई है जिसके कारण वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे। फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो लेयर हटा दो, वो भी अट्रैक्ट होने लग जाएगी। वो लेयर हटाने का काम गुरुदेव करते हैं। जैसे आपने कहा मैं नहीं होती, तो आप क्यों हो? क्या आपकी वो लेयर आस्ते आस्ते आपके गुरु ने हटाई। चेतो दर्पणम मार्जनम बव महागामा गणि निर्वापणम, कई कई जन्मों की वो लेयर चढ़ गई है ना, है कि नहीं, कई कई जन्मों की वो लेयर चढ़ गई है। अब वो लेयर इतनी चढ़ गई है, एक थिक थिक लेयर हो गई है। कृष्ण तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे और कृष्ण के बीच क्या है, वो लेयर है। इसीलिए मेरे ठाकुर ने सातवें अध्याय में क्या कहा, मैं अपनी आवृत हूं, योग माया आवृत हूं, 7:25, मैं अपनी योग माया से आवृत हूं, अर्थात सिक्के और मैग्नेट के बीच एक लेयर है, क्या कहते हैं, माया की लेयर है। इसलिए अच्छा दूसरी बात बताओ, एक लेयर है वुड की, एक लेयर है प्लास्टिक की, एक लेयर है रबर की, कुछ लेयर ऐसी चढ़ी है जो बिल्कुल थिन है तो सही लेकिन थिन है, तो उसको भी मैग्नेट अटैक कर लेगा, थिन बिल्कुल पतली है, जैसे कागज है, जैसे कपड़ा है, कपड़े के बीच अगर मैग्नेट हो पकड़ लेगा, कागज के बीच हो तब भी पकड़ लेगा, लेकिन वुड हो तो नहीं पकड़ेगा, ग्लास हो तो नहीं पकड़ेगा। ऐसे कुछ लोगों के ऊपर माया की लेयर बड़ी पतली होती तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन पे गुरु महाराज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों ऐसा है कि पिछले जन्म में हो सकता है वो लेयर उनकी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई हो, कुछ लेयर इतनी मोटी होती है कि गुरु महाराज को उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि जैसे हमारे देश में इन दिनों एक स्लोगन चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे गुरु है तो संभव है। अगर गुरु महाराज है और प्रमाणिक गुरु है, वो लेयर उठा के फेंक देगा और हम कृष्ण की ओर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो कभी कभी गुरु महाराज की पर्सनालिटी में कृष्ण ने उस प्रकार से एक ओरा दिया होता है कि वो न भी बोले तो भी उनके वाइब उस लेयर पे अटैक करते हैं और वो लेयर को हटा देते हैं और हम कृष्ण की ओर चल पड़ते, अट्रैक्ट होने लगे। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मम द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मेरे लिए तो सब है, लेकिन वो अट्रैक्ट किसको करता है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा जी। और कुछ
बापूजी, आपने यत्रो योगेश्वर श्लोक की सीरीज में कहा था कि जो राधा रानी है उनको आपने डिफाइन किया था एज श्री को एज राधा रानी डिफाइन किया था, और राधा रानी सिंबलाइजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अलौकिक शक्ति, और क्योंकि माँ सीता भी राधा रानी की एक परछाई है, उनकी एक एक्सपांशन है, तो वो भी उतनी शक्तिशाली हुई। तो जब रावण माँ सीता को खींचकर लिए जा रहा था, उनका अस्तित्व बिछे जा रहा था, तो उन्होंने अपनी शक्ति कहाँ खो दी थी उस दिन, तो उनको क्या राम को महान बनाना था इसलिए उन्होंने खुद को समझा हीन, तो क्या इसके लिए उसको आज रामायण बोला जाता है और सीतायन नहीं।
गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, जितनी भी शक्ति है, क्या बोला, जितनी भी, वो शक्तिमान के द्वारा है। क्या कोई शक्ति शक्तिमान के बिना हो सकती, क्योंकि शक्ति किसी ना किसी की होती है। मैं कहते ना इसमें बड़ी शक्ति है, तो शक्ति जहां है अर्थात कोई शक्ति बांध भी है तो उसकी तो शक्ति है। अब शक्ति जब शक्तिमान को छोड़ के किसी अन्य के पीछे भागेगी तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि शक्ति 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 इसलिए है कि उसका कोई शक्तिमान है ना। जिससे बच्चों एक वायर को पकड़ोगे क्या है, करंट है, लेकिन वो करंट वायर का नहीं है, बिजली का है। बिजली को ही तो वो बिजली वो जो करंट है उस वायर का नहीं है बल्कि पावर हाउस का, जहां से वो जनरेट। तो शक्ति भी तो कहीं से जनरेट हो रही है। जैसे हम खुद कहते हैं, आप लोग सुनो, क्योंकि बेटा हम कभी भी हवा हवाई की बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता आज मैं हवा हवाई की बातें करूंगा मीडिया में लाखों लोग सुनते हैं और वो सब के सब मिसगाइडेड हो जाएंगे। इसलिए मैं जो बोलता हूं मेरे गुरु की कृपा से शास्त्र के अनुसार प्रमाण होता है। जैसे मैं कहता हूं शक्ति है तो कोई शक्तिमान है, क्योंकि कहीं से तो वो जनरेट होती है ना। जैसे राधा रानी खुद जनरेट कहां से हुई, कृष्ण के लेफ्ट साइड से। वही मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के वृंदावन के महापुरुष के। तो कृष्ण से ही राधा, मतलब शक्तिमान है तो शक्ति हुई। ऐसे राम तो सीता। अब अगर जब तक वायर उसके साथ कनेक्शन में, तो उसमें क्या आएगी, पावर आएगा, लेकिन वो कनेक्शन से दूर हो जाए तो पावरहीन हो गया। इसलिए याद रखना, कोई भी शक्ति जब तक शक्तिमान के साथ है तो जनरेट होती है। वो शक्तिमान से शक्ति दूर हो गई, शक्तिहीन हो। अब आपने देखा कि मां सीता राम के साथ है फिर भी कहा मुझे हिरण चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, मां शबरी को क्या चाहिए, राम चाहिए। सीता मां कहती मुझको हिरण चाहिए। क्यों, ये सब हमारे बुजन्य है, लेकिन एक लीला के अनुसार समझाने के लिए बात हो रही कि मां शबरी क्या कह रही, राम चाहिए, और मां सीता जो राम के साथ है वो क्या कहती, मुझे हिरण चाहिए। लेकिन नहीं, तो जब तक मां सीता राम के साथ रही तब तक तो उसकी शक्ति थी, लेकिन जैसे ही कहा मुझे हिरण चाहिए। अब सुनो, हिरण की चाहत में ये बड़ी एक सिंबॉलिक बातें हैं, सिग्निफिकेंट बातें हैं, इसको समझनी चाहिए अंडरलाइन करके। अब राम को कहा मुझे हिरण चाहिए, लोग राम को क्या कहते हैं, आप चाहिए, और वो क्या कह रही, मुझे हिरण चाहिए। अब जब मां सीता ने जिद की कि मुझे हिरण चाहिए, तब भगवान राम को उस हिरण के पीछे जाना पड़ा। और यूं मां सीता, एक बात बताऊं, मां सीता का तो अपहरण उसी समय हो गया था जब उन्होंने राम को छोड़ के हिरण की मांग की, उसी समय बाद में तो सिर्फ प्रोसेस हुआ। ऐसी मैं आप सबों से भी कहता हूं, कृष्ण को छोड़ के कृष्ण से कुछ मत मांगना, घाटे का सौदा में रहोगे। कृष्ण को छोड़ के कृष्ण से कुछ नहीं मांगना, अगर कृष्ण से कुछ मांगना है तो कृष्ण को जोड़ के मांगना। कृष्ण को छोड़ के मत मांगना कुछ। इसीलिए मां सीता की शक्ति, क्योंकि उनकी सारी शक्ति तो राम से थी और वो राम को ही उन्होंने, आप देखो रावण की चाल थी ना, रावण को पता था कि जब तक राम है मैं सीता माँ को कुछ नहीं कर सकूं, पक्की बात। तो ये हिरण तो उन्हीं की तो चाल थी, रावण की चाल थी। और रावण, ओ हिरण कौन था? मारीच, मारीच। तो वो रावण को पता था कि जब तक राम के साथ है मैं कुछ नहीं कर सकूं, जब तक आप मेरे राम के साथ हो आपका कुछ नहीं होगा माया के पास। चुप, राम है तो फिर आपका क्या रावण करेगा? फिर रावण ने क्या किया सुनो। पहले तो ऐसी प्लानिंग की कि मां सीता राम राम से दूर हो गई, राम चले गए। फिर वहां वो मायावी था, उसने ऐसी आवाज निकाली, क्या बोला? लक्ष्मण, तब मां सीता कहती है लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी कष्ट में आए, जाओ। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, आपको छोड़ के अकेले नहीं जा सकती हूं, जा सकता। मां सीता ने कहा जाना पड़ेगा, ठीक है मैया जो आज्ञा, लेकिन ये रेखा देके जाता हूं। रावण को पता था कि जब तक राम है मैं सीता का हरण, जब तक लक्ष्मण है तब तक मैं सीता का हरण, जब तक लक्ष्मण रेखा है तब भी सीता का हरण नहीं कर सकता। ऐसे जब तक आपके जीवन में मेरा हरि है माया अपहरण नहीं कर सकती, जब तक आपके जीवन में आपका गुरु है माया हरण नहीं कर सकती, जब तक आपके जीवन में आपके गुरु की आज्ञा रेखा के रूप में है कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आपने आपके गुरु की आज्ञा का रेखा का उल्लंघन कर दिया उसी समय अपहरण हो जाओगे, अर्थात बहुत दूर चले जाओगे। और फिर क्या हुआ किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से यही कहूंगा, राम को छोड़ के राम से कुछ मत मांगना, जो भी मांगना है वो राम को जोड़ के मांगना, राम को जोड़ के मांगना। जैसे हनुमान जी को मां सीता ने अपना बहुमूल्य मोतियों का हार दे दिया, हनुमान जी ने वो हार को तोड़ा और मोती देखने लगे तब लोग हंसने लगे कि इसको क्या पता वानर, तो तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे भी पता है कि मां सीता के मोतियों का हार है और इसमें बहुमूल्य मोती है, लेकिन इन मोतियों में मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं, अगर इन मोतियों में मेरा राम नहीं तो मेरे किसी काम के नहीं है। इसीलिए कहता हूं राम से जो भी मांगो राम को जोड़ के मांगना, राम को छोड़ के नहीं मांगना। दुर्योधन ने मांगा, कृष्ण से मांगा, लेकिन कृष्ण को छोड़ के मांगा, और किसके लिए छोड़ दिया? अर्जुन के लिए छोड़ दिया। मुझे मेरे बहुत ही प्रिय श्री दिनेश तनेजा जी, उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया कि बापू आप कहते हो कि दोनों ही दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने कहा आप मांग लो, तो अर्जुन को तो उस समय पता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है, वो तो 11वें अध्याय के बाद पता पड़ा। तो अर्जुन ने कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी सेना को छोड़ के अकेले कृष्ण को मांग लूं, जब पता ही नहीं था कि कृष्ण ईश्वर है, वो तो उनके बुआ का बेटा था। तो बाद में विश्व रूप देखा तो पता चला, तब कहा मैं आपकी महिमा नहीं जानता था, इसलिए अकेले में बैठने में साथ खाते सोते में जो अपराध हुए क्षमा करना, तो बाद में पता पड़ा। तब अर्जुन ने क्यों मांगा कृष्ण को, कोई आप ऐसे बता सकता है? जी कोई बता सकता है? एक्चुअल बात यह है कि तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आपको एक सिंपली बात बता दूं, जय बद्री विशाल, बद्री विशाल में कृष्ण कौन है, नारायण, और अर्जुन कौन है, नर, वहीं से तो साथ है। ये कोई थोड़ी अभी द्वापर युग में दोस्ती हुई है, ये द्वापर युग की दोस्ती नहीं है, अर्जुन और कृष्ण की सतयुग, नर नारायण मेरा हरि है और नर अर्जुन है, ये वहीं से रिश्ता चला आ रहा है, वहीं से रिश्ता चला आ रहा है। और आते 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 जब द्वापर युग आया तो मेरा हरि मेरा नारायण अपने वास्तविक रूप कृष्ण, और वो नर किसके रूप में आया, अर्जुन के रूप में आया। अब उस समय अर्जुन पहचान नहीं पाया कि ये वही नारायण है, पहचान नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। अच्छा एक छोटा एक एक एक, एक बाबा आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, सब सुनो, आपके साथ ये हुआ होगा। एक व्यक्ति जिसको आपने पहली बार देखा है लेकिन देखते ही लगता है इसको कहीं देखा लगता है, पहली बार देखा है लेकिन लगता है इसको कहीं देखा ही तुमने पहली बार लेकिन लगता क्यों है देखा वाला। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहली बार देखते हैं लेकिन देखते ही अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या ये धरती, ये नदियां, ये रैना और सुरेश रैना और तुम क्यों अच्छे लगते हो भाई? तुमको तो मैं पहली बार देख रहा हूं और देखते ही तुमने बोल दिया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। कहां से ख्याल आया? अवश्य कोई पिछले जन्म का कोई भले हल्का ही है लेकिन कनेक्शन है। कुछ लोगों को देखते ही हमें खामखाई गुस्सा आता, उसने ना बिगाड़ा है हमारा, ना लेना ना देना, उसको देखते ही हमें अजीब सी एजिटेशन चीड़ होती है। ऐसा क्यों भाई? उसने तुम्हारा ना बिगाड़ा ना कुछ किया है, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है। ऐसे ही अर्जुन को खींच रहा था, नर को खींच रहा था नारायण, त्रेता युग वाला और सतयुग वाला है। फिर नर को कौन खींच रहा था? नारायण। क्यों? कि अर्जुन कहीं ना कहीं इंद्र का अंश है, कहीं ना कहीं अर्जुन इंद्र का अंश। और इंद्र ने धन जब गोवर्धन लीला हुई थी तब गोवर्धन लीला हुई थी तब इंद्र ने अपनी आराधना की और आराधना करके एक वरदान मांगा कि प्रभु मेरा अंश कौन, अर्जुन उसकी रक्षा करता, उसकी सब करता। तुम मेरा पहले से तुझसे है नाता कोई, वरना यूं ही दिल, पता नहीं ऐसी गाना है कोई। तो ये है अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता। अब आप बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनको क्या पता कृष्ण क्या है, जो बड़े बड़े देवता नहीं समझ सके, वैद्य ना समझा कोई देवता, ज्ञानी सब, ज्ञानी सारे के सारे कंफ्यूज हो गए। अच्छे अच्छे आज के सो कॉल्ड स्कॉलर भी कृष्ण को समझने में मार खा गए और कुछ भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे कुछ पता नहीं है, कृष्ण के पास बैठे गले में माला लटकाए बैठे, जबकि उनको भजन की महिमा का भी पता नहीं। ये क्या है सब, ये मैं क्या देख रहा हूं भाई, यही देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनका कृष्ण से कोई तो रिश्ता है। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इसलिए अर्जुन को कृष्ण का पता कुछ नहीं था, लेकिन वो रिश्ता खींच रहा था जो नरनारायण का जुड़ा हुआ था। नित्य भजो।